संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 26 नवंबर 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। दक्षिण अफ्रीका में कोविड 19 का नया खतरनाक वेरिएंट चिन्हित। यूरोप में संक्रमण में फिर चिंताजनक उछाल। वरिष्ठ यूएन अधिकारियों ने लिंग आधारित हिंसा को बताया एक वैश्विक संकट। कोरोना वायरस महामारी के दौरान बढ़ी चुनौतियां। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत में 3 विवादास्पद कृषि कानून वापस लिए जाने का किया स्वागत। दुनिया भर में 3 अरब लोगों को मयस्सर नहीं है स्वस्थ भोजन खुराक। और केवल पेट भरने के बजाय समुचित पोषण पर ध्यान देना है जरूरी। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीका में चिन्हित किए गए कोविड 19 के नए वेरिएंट को ग्रीक नाम ओमिक्रोन दिया है और इसके अनेक रूप परिवर्तनों व इसकी तेज संक्रमण रफ्तार के कारण इसे चिंताजनक रूप परिभाषित किया है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार आरंभिक सबूतों से पता चलता है कि डेल्टा जैसे अन्य वेरिएंट्स की तुलना में इस नए वेरिएंट से फिर से संक्रमित होने का ज्यादा जोखिम है। इस समय दक्षिण अफ्रीका के लगभग सभी प्रांतों में इसके मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी देशों से निगरानी बढ़ाने और इस वेरिएंट के बारे में बेहतर व गहन जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसके चरित्र का विश्लेषण करने के प्रयास बढ़ाने को कहा है। WHO ने तमाम देशों से ये आग्रह भी किया है कि वो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में चिन्हित किए गए कोविड 19 के नए वेरिएंट के मद्देनज़र यात्रा पाबंदियों पर विचार करने के लिए जोखिम आधारित और वैज्ञानिक रुख अपनाएं। इस बीच WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसिस ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि यूरोपीय क्षेत्र कोविड 19 महामारी के फैलाव का नया केंद्र बन गया है, मगर ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी देश या क्षेत्र अभी इस चुनौती से पूरी तरह नहीं निपट पाया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
पिछले सप्ताह कुल संक्रमण मामलों और मृतक संख्या का 60% से अधिक यूरोपीय देशों में दर्ज किया गया। स्वास्थ्य प्रणालियों पर भीषण बोझ है और स्वास्थ्यकर्मी थक चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है कि एक और यूरोप में हालात गंभीर हैं, वहीं कुछ देशों में लोगों ने मान लिया है कि महामारी का खतरा टल चुका है। उनमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास है कि वैक्सीन ने महामारी का अंत कर दिया है और कि जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है उन्हें कोई और सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने आगाह किया कि वैक्सीन टीकों से जिंदगियों की रक्षा होती है, मगर वे पूर्ण रूप से संचारण की रोकथाम नहीं करते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के फैलाव से पहले वैक्सीन की मदद से वायरस संचारण में 60% तक की कमी लाने में मदद मिली थी। डेल्टा के मामले में ये घटकर 40% रह गई है।
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने लिंग आधारित हिंसा को एक वैश्विक संकट करार दिया है। ध्यान दिला दें कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस से ठीक पहले जारी एक रिपोर्ट दर्शाती है कि कोविड 19 के दौरान घरों व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा पर असर हुआ है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत यूएन संस्था यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने क्षोभ जताते हुए कहा कि तमाम पड़ोसी इलाकों में ऐसी महिलाएं व लड़कियां रहती हैं जिन्हें खतरे में जीवन गुजारना पड़ रहा है। दुनिया भर में हिंसक संघर्ष, जलवायु संबंधी प्राकृतिक आपदाएं, खाद्य असुरक्षा और मानव अधिकार उल्लंघन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। यूएन संस्था के अनुसार 70% से अधिक महिलाओं ने संकट भरे हालात की पृष्ठभूमि में लिंग आधारित हिंसा का अनुभव किया है। धनी व निर्धन दोनों देशों में लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण महिलाओं व लड़कियों के प्रति हिंसक घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। यूएन विमेन की शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की हिंसा की जानकारी अक्सर सामने नहीं आ पाती है। ऐसी आवाजें कथित कलंक, शर्म या अपराधकर्ताओं के डर के नाम पर या एक ऐसी न्याय प्रणाली के भय से दबा दी जाती है जो महिलाओं के लिए मददगार नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार द्वारा 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। ध्यान रहे कि इन कानूनों के कारण लगभग एक वर्ष पहले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनके दौरान करीब 600 लोगों की मौत भी हुई। खाद्य अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर माइकल फाखरी ने शुक्रवार को एक वक्तव्य में भारत सरकार से हताहत लोगों के लिए जवाबदेही निर्धारित किए जाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि इस दुखद अध्याय का पन्ना पलटने के लिए अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रदर्शनों के दौरान हताहत हुए लोगों के मामलों में जिम्मेदार तत्वों की जवाबदेही निर्धारित किए जाने की पुकारों को सुने और इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं होने देने के लिए कदम उठाने की गारंटी दें। भारत में ये 3 कृषि कानून 2020 के आरंभ में बाजार का विनियमीकरण करने के लक्ष्य से पारित किए गए थे, जब कोविड-19 महामारी भी चरम पर थी। इन कानूनों की व्यापक पैमाने पर ये कहते हुए आलोचना हुई थी कि इन्हें प्रभावित समुदायों के साथ समुचित और उपयुक्त परामर्श किए बिना ही संसद में जल्दबाजी में पारित कराया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को औचक घोषणा में कहा था कि इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया संसद के आगामी सत्र में पूरी की जाएगी। यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञ माइकल फाखरी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार या बदलाव लाने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदम देश के मानवाधिकार संकल्पों से सूचित होंगे और ऐसे कदम किसानों, समुदायों और श्रम संगठनों के साथ सार्थक विचार विमर्श करने के बाद उठाए जाएंगे। उनकी इस पुकार को कुछ अन्य मानवाधिकार विशेषज्ञों का भी समर्थन हासिल है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि एजेंसी FAO ने कहा है कि दुनिया भर में लगभग 3 अरब लोगों यानी विश्व की कुल आबादी के लगभग 40% हिस्से के पास अपने लिए स्वस्थ भोजन की एक खुराक का इंतजाम करने के साधन उपलब्ध नहीं है। एजेंसी ने मंगलवार को एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अगर अनपेक्षित घटनाओं के कारण लोगों की आमदनी में 1/3 कमी हो जाती है तो अतिरिक्त 1 अरब लोग भी इसी पात में शामिल हो जाएंगे। कुछ और जानकारी सुनिए अंशु शर्मा से।
यूएन खाद्य व कृषि एजेंसी ने देशों से अपनी व्यवस्थाओं और प्रणालियों को अनपेक्षित झटकों और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए और ज़्यादा सहन सक्षम व सहनशील बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इनमें कोविड-19 महामारी जैसे झटके शामिल हैं जो दुनिया भर में हाल के समय में भुखमरी में आए उछाल के बहुत बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भी ज़्यादा विचार योग्य स्थिति ये है कि अति अहम परिवहन में बाधा उत्पन्न होने के कारण लगभग 84.5 करोड़ लोगों के लिए खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हो जाएंगे। वैसे तो भुखमरी से संबंधित चुनौतियां निम्न आय वाले देशों में ज़्यादा बड़ी होती हैं, मगर मध्यम आय वाले देशों में भी बहुत जोखिम है।
जलीय भोजन प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और अति आवश्यक वसा अम्लों का स्रोत है, जिसके सेवन से बेहतर पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है। विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने यूएन न्यूज़ के साथ एक खास इंटरव्यू में 2021 के लिए टिकाऊ व सेहतमंद आहार में मछली और जलीय खाद्य प्रणालियों की अहम भूमिका को रेखांकित किया है। सुनिए सचिन गौड़ की ये रिपोर्ट।
जलीय भोजन एक्वाटिक फूड्स यानी जल से प्राप्त होने वाली मछलियां, जीव और समुद्री खरपतवार जैसे पौधे। डॉक्टर शकुंतला थिल्स्टेड को पोषण सुरक्षा में जलीय भोजन के योगदान और नवाचारी उपायों पर रिसर्च के लिए अक्टूबर महीने में सम्मानित किया गया। उन्होंने यूएन न्यूज के साथ एक खास बातचीत में अपनी रिसर्च के बारे में जानकारी दी।
माय अप्रोच वाज पीपल सेंटर्ड न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेस।
मेरा प्रयास व्यक्ति केंद्रित और पोषण जरूरतों को ध्यान में रखने वाले उपायों पर रहा है, जिसमें आमजन के पोषण व स्वास्थ्य पर बल दिया गया, विशेष रूप से गर्भवती व स्तनपान करा रही महिलाओं व नवजात शिशुओं के लिए पहले 1000 दिनों में पोषण पर। मेरी कोशिश थी कि महज पेट भरने की सोच से आगे बढ़कर पोषक आहार पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
मछली में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होने के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और कैल्शियम, जिंक, आयोडीन और आयरन जैसे खनिज भी मौजूद होते हैं। डॉक्टर थिलस्टेट का कहना है कि मछली और जलीय भोजन को सुपर फूड के रूप में देखा जाना चाहिए।
Because they are superfoods in terms of their micronutrient content and essential fatty acids. Well, aquatic foods is.
क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों व बेहद जरूरी वसा अम्लों के मामले में मछली व जलीय भोजन सुपरफूड हैं। जलीय भोजन ऐसे खाद्य समूहों में हैं जिसे खाने की प्लेट में शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ चंद प्रमुख अनाजों के सेवन तक सीमित रहने के बजाय जलीय भोजन को सब्जियों, फलों व दलहन सहित विविध आहार के साथ मिलाकर स्वास्थ्य, पोषण व संज्ञान क्षमता को मजबूती प्रदान करने में मदद मिल सकती है।
डॉक्टर थिलस्टेड का मानना है कि लोगों का महज पेट भरने की सोच से आगे बढ़कर बढ़ती आबादी के पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में करीब 82 करोड़ लोगों के लिए मछली पकड़ना और मछली पालन भोजन, पोषण और आय का स्रोत है। भुखमरी घटाने और बेहतर पोषण के अलावा जलीय भोजन पर आधारित आजीविकाओं के जरिए आर्थिक अवसरों के सृजन में भी मदद मिल सकती है।
And combined with other nutrition sensitive approaches like nutrition education, social behavior change, communication.
पोषण संबंधी शिक्षा, सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए संचार माध्यमों का सहारा लेकर और अन्य उपायों के जरिए जलीय भोजन के उत्पादन, बिक्री व परिवार में खपत को बढ़ाया जा सकता है।
अन्य पशुजनित भोजन गोमांस चिकन की तुलना में मछली की कुछ प्रजातियों के उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन पदचिह्नों का स्तर भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसलिए डॉक्टर थिलस्टेड का मानना है कि जलीय भोजन को बढ़ावा देकर कई लक्ष्यों को साधा जा सकता है।
तो साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के इस अंक में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत। Thank you.